नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एलन एंडरसन की पुस्तक मैनेजमेंट टेक चार्ज ऑफ योर टीम, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कोचिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टीम प्रबंधन पर केंद्रित एक व्यावहारिक परिचयात्मक मार्गदर्शिका है। यह उन लोगों के लिए लिखी गई प्रतीत होती है जो पहली बार प्रबंधकीय जिम्मेदारी संभाल रहे हैं या अपनी टीम के रोजमर्रा के संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। पुस्तक का घोषित दायरा चार जुड़े हुए क्षेत्रों को समेटता है, स्पष्ट संवाद, नेतृत्व, कोचिंग और संघर्ष समाधान। इसके साथ कार्य आवंटन, जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन तथा टीम सदस्यों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान जैसे विषय भी शामिल हैं। लगभग 261 पृष्ठों की यह पुस्तक गहरे अकादमिक शोध या किसी एक कठोर प्रबंधन मॉडल के बजाय प्रबंधक की व्यवहारिक भूमिका पर जोर देती है। इसका केंद्रीय विचार यह है कि प्रबंधक का काम केवल अधिकार दिखाना नहीं बल्कि टीम को दिशा देना, जरूरत के समय उपलब्ध रहना और सामूहिक काम की जवाबदेही लेना है। इसलिए इसे उभरते पर्यवेक्षकों और छोटे दलों के नेताओं के लिए बुनियादी कौशलों का संक्षिप्त संकलन समझना अधिक उचित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, स्पष्ट संवाद को टीम समन्वय का आधार मानना। पुस्तक के घोषित विषयों में प्रभावी संचार प्रमुख है और यह चयन व्यावहारिक है, क्योंकि अधिकांश टीम समस्याएं केवल क्षमता की कमी से नहीं बल्कि अपेक्षाओं की अस्पष्टता से बढ़ती हैं। प्रबंधक को यह स्पष्ट करना होता है कि काम क्या है, उसे कौन करेगा, प्राथमिकता क्या है और परिणाम किस रूप में अपेक्षित है। ऐसे संवाद से टीम सदस्य अनुमान लगाने के बजाय निर्णय लेने के लिए आवश्यक संदर्भ पाते हैं। यह केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं है। नीचे से ऊपर आने वाली जानकारी, जैसे कार्य में अड़चन, संसाधन की कमी या समय सीमा का जोखिम, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रभावी संचार में सुनना, प्रश्न पूछना और समझ की पुष्टि करना भी शामिल है। पुस्तक की स्थिति के अनुरूप संवाद का उद्देश्य प्रबंधक को केंद्र में रखना नहीं बल्कि काम को स्पष्ट और समन्वित रखना है। नियमित संवाद से गलतफहमियां जल्दी दिख सकती हैं और छोटे मुद्दे बड़े विवाद बनने से पहले सुलझ सकते हैं। हालांकि उपलब्ध जानकारी किसी विशेष संचार ढांचे की पुष्टि नहीं करती, इसलिए इसे किसी निश्चित सूत्र की पुस्तक नहीं माना जाना चाहिए। इसका उपयोगी पाठ इतना है कि प्रबंधक को अपने संदेश की स्पष्टता और टीम से मिलने वाली प्रतिक्रिया दोनों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरा, कार्य आवंटन में ताकत, कमजोरी और जवाबदेही का संतुलन। पुस्तक टीम सदस्यों की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने, कार्य आवंटित करने और जिम्मेदारी सौंपने पर ध्यान देती है। ये तीनों बातें एक ही प्रबंधकीय निर्णय के अलग हिस्से हैं। केवल सबसे सक्षम व्यक्ति को हर महत्वपूर्ण काम देने से तात्कालिक गति मिल सकती है, पर टीम कुछ लोगों पर निर्भर हो जाती है। दूसरी ओर, केवल समान वितरण के नाम पर कौशल और कार्य की मांग की अनदेखी करने से गुणवत्ता तथा समय सीमा प्रभावित हो सकती है। बेहतर आवंटन में प्रबंधक काम की जटिलता, व्यक्ति की वर्तमान क्षमता, सीखने की जरूरत और उपलब्ध सहयोग, इन सबको देखता है। प्रत्यायोजन का अर्थ काम छोड़ देना नहीं है। प्रबंधक परिणाम की अपेक्षा, निर्णय की सीमा, आवश्यक संसाधन और समीक्षा के बिंदु स्पष्ट करता है, जबकि कार्य करने वाले व्यक्ति को उचित स्वायत्तता देता है। इस संतुलन से जिम्मेदारी वास्तविक बनती है। व्यक्ति को केवल आदेश पालन नहीं करना पड़ता बल्कि वह अपने हिस्से के परिणाम का स्वामी बनता है। पुस्तक का व्यावहारिक महत्व यहां है कि यह प्रबंधन को व्यक्तिगत नियंत्रण के बजाय सामूहिक क्षमता के आयोजन के रूप में रखती है। फिर भी पाठक को याद रखना चाहिए कि किसी सदस्य की कमजोरी को स्थायी लेबल नहीं बनाना चाहिए। सही समर्थन, अभ्यास और अनुभव से वही क्षेत्र विकास का अवसर भी बन सकता है। तीसरा, नेतृत्व को पद के बजाय दिशा और उपस्थित समर्थन के रूप में देखना। इस पुस्तक के विवरण में नेतृत्व का संबंध टीम के लिए मौजूद रहने, परियोजना को प्रबंधकीय दृष्टि से देखने और काम पूरा कराने के लिए दृष्टि तथा ऊर्जा दिखाने से जोड़ा गया है। यह नेतृत्व को केवल औपचारिक पद या कठोर नियंत्रण से अलग करता है। प्रबंधक के पास अधिकार हो सकता है, लेकिन नेतृत्व तब दिखाई देता है जब वह प्राथमिकताओं को समझने योग्य बनाता है, निर्णयों के पीछे का संदर्भ बताता है और कठिन समय में टीम को दिशा देता है। टीम के परिणाम की अंतिम जवाबदेही प्रबंधक पर होने का विचार भी इसी दृष्टि से जुड़ा है। इसका अर्थ हर कार्य स्वयं करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बाधाएं पहचानी जाएं, निर्णय समय पर हों और जिम्मेदारियां बिखरे नहीं। टीम प्रबंधक के व्यवहार से यह भी सीखती है कि दबाव में संवाद कैसे किया जाए, गलती पर प्रतिक्रिया कैसी हो और असहमति को कैसे संभाला जाए। इसलिए नेतृत्व की विश्वसनीयता कथनों से कम, निरंतर व्यवहार से अधिक बनती है। उपलब्ध सामग्री पुस्तक को किसी विशिष्ट नेतृत्व सिद्धांत से नहीं जोड़ती, फिर भी इसका स्पष्ट व्यावहारिक संकेत है कि उत्साह और दिशा साथ साथ चाहिए। केवल प्रेरक भाषा बिना संसाधन और स्पष्टता के पर्याप्त नहीं है, और केवल निगरानी बिना विश्वास व समर्थन के सहभागिता कमजोर कर सकती है। चौथा, कोचिंग के जरिए प्रदर्शन समीक्षा को सीखने की प्रक्रिया बनाना। कोचिंग पुस्तक के मुख्य विषयों में से एक है, और यह प्रबंधक की भूमिका को केवल काम बांटने वाले व्यक्ति से आगे ले जाती है। जब टीम सदस्य किसी कार्य में अटकता है तो प्रबंधक के पास दो सरल विकल्प होते हैं, सीधे समाधान बता देना या समस्या को समझने में उसकी सहायता करना। कोचिंग दूसरा रास्ता मजबूत करती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके काम, निर्णय और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने में सक्षम बनाना है। उपयोगी कोचिंग में प्रतिक्रिया विशिष्ट होनी चाहिए। अस्पष्ट प्रशंसा या केवल आलोचना से व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि किस व्यवहार को दोहराना है या क्या बदलना है। काम के लक्ष्य, देखे गए व्यवहार, उसके प्रभाव और अगले अभ्यास योग्य कदम पर बातचीत अधिक उपयोगी आधार देती है। यह प्रक्रिया शक्तियों की पहचान से भी जुड़ती है, क्योंकि विकास केवल कमी ठीक करने का नाम नहीं है। व्यक्ति की मौजूदा क्षमता को बड़े दायित्व में लगाने और नई क्षमता बनाने दोनों की जरूरत हो सकती है। पुस्तक के उपलब्ध विवरण से किसी औपचारिक कोचिंग पद्धति की पुष्टि नहीं होती, इसलिए उसके नाम पर विस्तृत मॉडल जोड़ना उचित नहीं होगा। फिर भी इसका व्यावहारिक संदेश स्पष्ट है। प्रबंधक टीम की तत्काल उत्पादकता के साथ उसके कौशल विकास के लिए भी जिम्मेदार है। इस दृष्टि से नियमित, सम्मानजनक और काम केंद्रित बातचीत टीम की आत्मनिर्भरता बढ़ा सकती है। अंत में, संघर्ष समाधान में दोषारोपण के बजाय कामकाजी समाधान पर जोर। संघर्ष समाधान को अलग कौशल के रूप में शामिल करना इस बात को स्वीकार करता है कि टीम में मतभेद असामान्य नहीं है। कार्य की प्राथमिकता, भूमिका, संसाधन, शैली या निर्णय पर असहमति हो सकती है। समस्या मतभेद का होना नहीं, बल्कि उसका अनकहा रहना, व्यक्तिगत आरोप में बदलना या काम को रोक देना है। प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वह स्थिति को समय रहते सुने और चर्चा को व्यक्ति के चरित्र से हटाकर काम, अपेक्षा और प्रभाव पर लाए। उदाहरण के लिए, उपयोगी प्रश्न यह हो सकते हैं कि विवाद किस निर्णय या कार्य से जुड़ा है, किस जानकारी की कमी है, किन जिम्मेदारियों में ओवरलैप है और आगे कौन सा व्यवहार स्वीकार्य होगा। इस प्रकार समाधान केवल शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं रहता, बल्कि कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने का अवसर बनता है। निष्पक्षता यहां आवश्यक है। यदि प्रबंधक बिना सुने किसी एक पक्ष को सही ठहरा दे तो भरोसा घट सकता है और भविष्य की समस्याएं छिपाई जा सकती हैं। वहीं हर संघर्ष में तुरंत हस्तक्षेप करना भी जरूरी नहीं, यदि सदस्य सम्मानपूर्वक स्वयं समाधान तक पहुंच सकते हो। उपलब्ध विवरण किसी विशेष संघर्ष समाधान तकनीक का प्रमाण नहीं देता, पर पुस्तक के विषय विन्यास से यह उचित निष्कर्ष निकलता है कि संवाद, नेतृत्व और कोचिंग के साथ संघर्ष समाधान को जोड़कर देखा गया है, क्योंकि इन कौशलों की कमी अक्सर विवाद को लंबा करती है। निष्कर्ष में, मैनेजमेंट टेक चार्ज ऑफ योर टीम उन नए प्रबंधकों, टीम लीडरों, पर्यवेक्षकों और छोटे व्यवसायों के जिम्मेदार लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है, जिन्हें लोगों के साथ काम कराने की बुनियादी जिम्मेदारी मिली है। विशेष रूप से वे पाठक इससे लाभ ले सकते हैं जिनकी तकनीकी क्षमता अच्छी है, लेकिन जिन्हें काम बांटने, अपेक्षाएं स्पष्ट करने, प्रतिक्रिया देने या मतभेद संभालने का औपचारिक अनुभव कम है। पुस्तक का संभावित व्यावहारिक लाभ इसकी विषय सीमा में है। यह टीम प्रबंधन को केवल लक्ष्य तय करने या प्रेरणा देने तक सीमित नहीं करती, बल्कि संवाद, प्रत्यायोजन, क्षमता की पहचान, कोचिंग और विवाद समाधान को परस्पर जुड़ी जिम्मेदारियों के रूप में रखती है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों में किसी एक उन्नत नेतृत्व सिद्धांत, विस्तृत शोध या जटिल संगठनात्मक रणनीति पर जोर होता है। इसके विपरीत, यह पुस्तक रोजमर्रा के प्रबंधकीय व्यवहारों का एक व्यापक प्रवेश बिंदु प्रतीत होती है। यही इसकी विशेषता भी है और सीमा भी। पाठक को यहाँ किसी गहन प्रमाण आधारित मॉडल या बड़े संगठनों की जटिल राजनीति का विस्तृत विश्लेषण अपेक्षित नहीं रखना चाहिए, लेकिन यदि उद्देश्य टीम संभालने के जरूरी क्षेत्रों का व्यवस्थित अवलोकन पाना है तो यह पुस्तक उपयोगी आधार दे सकती है। सबसे अच्छा उपयोग इसे पढ़कर अपने कार्यस्थल में स्पष्ट संवाद, सोच समझकर प्रत्यायोजन, नियमित विकासात्मक बातचीत और समय पर संघर्ष संवाद जैसी आदतें लागू करने में है। अनुभवी प्रबंधक इसे पुनरावलोकन के लिए पढ़ सकते हैं, जबकि नए पाठक इसे आगे के अधिक विशिष्ट प्रबंधन अध्ययन की तैयारी मान सकते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एलन एंडरसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।